एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जैक केरुएक के उस उपन्यास की जिसने एक पूरी पीढ़ी को आवाज दी, ऑन द रोड।
हाँ, 1957 में आई थी ये किताब और आते ही मतलब छा गई थी।
बिल्कुल। और इसके लेखक जैक केरुएक बीट जेनरेशन के एक बड़े लेखक माने जाते हैं।
हाँ, 1922 से 1969 तक। फ्रांसीसी कनाडाई बैकग्राउंड था उनका, वर्किंग क्लास में पले बड़े।
उनकी लिखने की शैली भी बड़ी अनोखी थी, वो जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोज।
हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोज मतलब जैसे जैज संगीत होता है ना, बिना किसी तहशुदा धुन के बस बजता जाता है, वैसे ही लिखने की कोशिश।
अच्छा।
चेतना प्रवाह जैसा, जो मन में आ रहा है जैसे आ रहा है लिखते जाओ। उस जमाने की सदी हुई स्टाइल से बिल्कुल अलग, अनुभव को बिल्कुल कच्चा जैसा है वैसा पकड़ने की कोशिश।
और ऑन द रोड शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो कहानी जो उन्होंने एक लंबे कागज के रोल पर लिख डाली थी।
हाँ हाँ, वही कहते हैं सिर्फ 3 हफ्तों में, 1951 की बात है, टेलीटाइप पेपर का एक लंबा सा स्क्रॉल था। असल में ये केरुआक और उनके दोस्तों की कहानी है, खासकर नील कैसिडी जो इस किताब में डीन मोरियाटी बने हैं। उनकी अमेरिका और मेक्सिको की यात्राओं का कह सकते हैं एक तरह का आत्मकथात्मक ब्यौरा है ये।
और इसका संदर्भ भी दिलचस्प है, मतलब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है।
हाँ,
अमेरिका में बाहर से तो सब ठीक लग रहा है, ऐसा आ रहा है,
लेकिन अंदर एक घुटन है।
हाँ,
एक तरह का सामाजिक दबाव कि सबको एक जैसा बनना है, एक ढर्रे पे चलना है।
और इसी माहौल से ये किरदार भागना चाहते हैं, कुछ असली कुछ जिंदा महसूस करना चाहते हैं।
बिल्कुल। तो आज हम इसी खोज को, इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या जिसकी तलाश में वो सड़क पर हैं?
और क्या ये जो बेलगाम आजादी है, क्या वो सच में सुकून देती है या फिर वो खुद ही एक जाल बन जाती है? चलिए देखते हैं।
कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में। सैल पैराडाइज नाम का एक नौजवान लेखक है।
केरुएक का अपना अक्स है ना?
हाँ, काफी हद तक। तो ये सैल जो है वो थोड़ा बुझा हुआ सा है, हाल ही में तलाक हुआ है, बीमारी से उठा है, जिंदगी जैसे थम सी गई है। उसे लग रहा है कि वो जिंदगी जी नहीं रहा, बस उसके बारे में सोच रहा है, लिख रहा है। और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है डीन मोरियाटी की, एक तूफान की तरह।
डेनवर से आया हुआ।
हाँ, डेनवर से, तेज तर्रार, बातों का जादूगर, करिश्माई और उतना ही गैर जिम्मेदार। पहले जेल भी जा चुका है। केरुएक ने उसे कहीं होली गूफ कहा है, मतलब एक पवित्र मस्त मौला, नादान।
हाँ, कुछ वैसा ही, जिसे बस जीना है, औरतें, गाड़ियां, जैज, बातें, जिंदगी का हर रस चाहिए उसे तुरंत।
तो सैल के लिए डीन वो सब बन जाता है जो वो खुद नहीं है।
कच्ची ऊर्जा, नियमों को तोड़ने की हिम्मत।
बिल्कुल, जिंदगी को बिना सोचे समझे गले लगाने का जज्बा। और यहीं से वो तलाश शुरू होती है जिसे वो लोग आईटी कहते हैं।
ये आईटी, ये क्या चीज है? बड़ा रहस्यमय सा लगता है।
हाँ, ये कोई चीज नहीं है, ये एक एहसास है, परमानंद का, समझ का वो पल जब लगता है कि हाँ बस यही है, सब कुछ समझ आ गया, जिंदा होने का एहसास।
अच्छा।
वो इसे कभी किसी जैज म्यूजिशियन के सोलो में ढूंढते हैं, कभी तेज रफ्तार गाड़ी में, कभी नशे में, कभी गहरी बातों में,
दोस्ती में भी।
हाँ, दोस्ती के उन उलझे हुए गहरे रिश्तों में भी। ये जिंदगी की रोजमर्रा की सतह को तोड़कर किसी गहरी सच्चाई तक पहुंचने की एक कोशिश है।
तो मतलब कहानी किसी मंजिल की नहीं, बस चलते रहने की है, सफर की।
बिल्कुल, कोई एक प्लॉट नहीं है इसमें, बस 1947 से 1950 के बीच साल डीन और उनके दोस्तों की कई यात्राएं हैं पूरे अमेरिका में, न्यूयॉर्क के जैज क्लब से सैन फ्रांसिस्को के बोहेमियन ठिकानों तक, डेनवर, न्यू ऑलियंस, यहाँ तक कि मेक्सिको भी।
बस यात्राएं, मिलना, बिछड़ना और फिर चल पड़ना।
हाँ, वही एक निरंतर गति।
तो फिर केंद्रीय संघर्ष क्या है कहानी का? अगर कोई मंजिल नहीं है तो लड़ाई किससे है, बाहरी दुनिया से या अंदर ही कुछ चल रहा है?
ज्यादातर अंदरूनी ही है, एग्जिस्टेंशियल कह सकते हैं। सवाल यह है कि ये जो अंतहीन तलाश है रोमांच की, आजादी की, क्या ये सच में किसी सुकून या ज्ञान तक ले जा सकती है? या फिर ये रास्ता बस थकान और बिखराव की तरफ ही जाता है? क्या इस तरह जीने में, सब कुछ जला देने में कोई मतलब है, या ये बस खुद को तबाह करने का तरीका है?
चलिए किरदारों पर आते। सैल पैराडाइज जो कहानी सुना रहा है, उसकी यात्रा कैसी दिखती है इस सब में?
हाँ, सैल तो कहानी का दिल है, उसकी आंखें भी। वो एक सोचने वाला लेखक है, वो इन अनुभवों को जीना भी चाहता है और समेटना भी चाहता है शब्दों में।
एक दर्शक भी है वो।
हाँ बिल्कुल, शुरू में वो डीन को एक गुरु की तरह, एक आदर्श की तरह देखता है, पश्चिमी हीरो जैसा। उसमें वो हिम्मत है जो सैल में नहीं। वो डीन के साथ इस पागलपन में शामिल होता है, लेकिन हमेशा थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर देखता भी रहता है, नोट करता है
और धीरे धीरे बदलता है।
हाँ, धीरे धीरे उसका मोह भंग होता है। वो समझने लगता है कि डीन के ये जो किक्स हैं, यानी वो तात्कालिक मजे, वो रोमांच, उनका एक स्याह पहलू भी है, उनमें स्वार्थ है। और आखिर में सैल उस बेचैन रफ्तार के बजाय स्थिरता को चुनता है, रचने को चुनता है, अपनी किताब लिखने को।
उसे अपना आईटी शायद सड़क पर नहीं बल्कि लिखने में मिलता है,
शायद। हाँ कह सकते हैं।
और डीन मोरियाटी, नील कैसिडी पर आधारित, उससे क्या कहें, हीरो, विलन, कुछ और ही? इतना आकर्षक क्यों लगता है ये किरदार, जबकि वो इतना विनाशकारी भी है?
डीन इस कहानी की बिजली है। वो दुखद एंटी हीरो, पारंपरिक नायक तो बिल्कुल नहीं, पर सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है।
उसमें वो करिश्मा है,
गजब का करिश्मा है, लेकिन उतनी गहरे विरोधाभास भी हैं। वो एक होली कॉन मैन जैसा है, एक पवित्र ठग।
पवित्र ठग, दिलचस्प है।
हाँ, मतलब एक तरफ वो ईश्वर और आत्मा की ऊंची ऊंची बातें करेगा, दर्शन झाड़ेगा, दूसरी तरफ बीवियों को धोखा देगा, बच्चों को छोड़ देगा।
उसकी प्रेरणा क्या है, उसे क्या चलाता है?
बस रफ्तार, अगला रोमांच। ठहराव से उसे डर लगता है, जिम्मेदारियों से कह सकते हैं दहशत होती है। उसकी यात्रा ऊपर नहीं जाती, नीचे की तरफ जाती है।
जिस ऊर्जा से सैल खिंचता है, वही उसे खत्म कर देती है।
बिल्कुल, कहानी के अंत तक वो एकदम थक चुका, टूट चुका, कंगाल, अकेला रह जाता है। वो उस बेलगाम आजादी के ख्वाब और उसकी भयानक कीमत, दोनों का प्रतीक है।
और सैल और डीन का रिश्ता, ये दोस्ती, यही तो उपन्यास की धुरी है।
हाँ, और ये बहुत बहुत पेचीदा और गहरी दोस्ती है। एक तरफ सैल है जो डीन में वो सब देख रहा है जो वो खुद बनना चाहता है, नायक पूजा है एक तरह की।
और दूसरी तरफ डीन,
डीन को सैल जैसा एक पढ़ा लिखा साथी चाहिए जो उसकी बातों को समझे, उसकी तारीफ करे, एक दर्शक चाहिए उसे। सैल डीन की ऊर्जा को महान समझता है, और डीन सैल को वो कच्चा माल देता है जिसके बारे में सैल लिखना चाहता है।
तो एक दूसरे पर टिके हैं, लेकिन बराबर नहीं है रिश्ता।
हाँ, सहजीवी है पर असमान। और जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, ये दोस्ती टूटती है, बिखरती है। सैल को एहसास होता है कि डीन की दुनिया में रहने की कीमत खुद टूटना है।
वो आखिरी सीन जब सैल डीन की मदद नहीं कर पाता।
हाँ, वो बहुत दर्दनाक है। वो दिखाता है कि एक दौर खत्म हो गया, और सैल के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी था, चाहे कितना भी मुश्किल हो।
और दूसरे किरदार भी हैं, कार्लो मार्क्स, ओल्ड बुल्ली।
हाँ, कार्लो मार्क्स यानी एलन गिन्सबर्ग, वो बौद्धिक कवि दोस्त। ओल्ड बुल्ली यानी विलियम एस बरोज, वो नशेड़ी बुद्धिजीवी जो बीट सोच के ज्यादा स्याह पहलू को दिखाता है।
और महिला किरदार, मैरी लॉ, कैमिल, टेरी।
महिला किरदार अक्सर वो प्यार और स्थिरता का प्रतीक बनकर आती हैं, जिन्हें ये मर्द अपनी खोज में पीछे छोड़ देते हैं, जैसे सफर में छोड़ गया कोई सामान। उपन्यास ये भी दिखाता है कि कैसे पुरुषों की ये जो आज़ादी की खोज है, ये अक्सर औरतों और बच्चों की जिंदगियों पर भारी पड़ती है, उन्हें कोलैटरल डैमेज की तरह देखा जाता है।
उपन्यास 5 हिस्सों में है, हर हिस्सा एक बड़ी यात्रा, किरदारों में बदलाव, पहला हिस्सा कैसे शुरू होता है?
पहला हिस्सा 1947, सैल अकेला निकलता है पश्चिम की ओर पहली बार, बस से, हिचहाइकिंग से। अमेरिका को देखता है, उसके लोगों को एक रोमांटिक नजर से।
डेनवर में डीन और दोस्तों से मिलता है,
फिर सैन फ्रांसिस्को जाता है, वहां टेरी मिलती है, एक मैक्सिकन अमेरिकन लड़की, प्यार होता है, खेतों में काम करते हैं।
ये थोड़ा शांत समय लगता है।
हाँ, एक जमीनी खुशी का पल है। लेकिन सैल की बेचैनी वो उसे वापस न्यूयॉर्क खींच लाती है। तो ये हिस्सा वो पैटर्न सेट करता है, रफ्तार, छोटे छोटे जुड़ाव और फिर वापसी।
और फिर दूसरा हिस्सा 1949 में,
दो साल बाद, सैल फिर बेचैन, वर्जीनिया में डीन से मिलता है जो अभी अभी तलाक लेकर आया, फिर साथ में न्यू ऑर्लियंस जाते हैं ओल्ड बुल्ली के पास, और फिर सैन फ्रांसिस्को। ये जंगली सफर है, बीबॉप जैज, मारिजुआना, लंबी लंबी दार्शनिक बहसें।
यही डीन का वो दोहरापन दिखने लगता है।
हाँ, साफ तौर पर, एक तरफ पत्नी कैम्बलवे नवजात बेटी है, दूसरी तरफ मैरिलो है, वो फंसा हुआ है, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें खुलकर सामने आती हैं। अब सड़क का रोमांच नतीजों की हकीकत से टकराने लगता है।
तीसरा हिस्सा सबसे उन्मत्त बताया गया है, 1949 का ही।
हाँ, डीन न्यूयॉर्क आता है, सैल और डीन शहर में पार्टियों और मौज मस्ती का जैसे तूफान ला देते हैं, फिर एक कैडिलैक गाड़ी लेकर न्यूयॉर्क से शिकागो और डेनवर जाते हैं।
ये सफर शायद एक टर्निंग पॉइंट है सैल के लिए।
बिल्कुल, ये नशे और रफ्तार का एक धुंधलका है। यहीं सैल का डीन को लेकर मोह टूटना शुरू होता है। और सफर का अंत कैसे होता है? डीन अचानक सैल को सैन फ्रांसिस्को में अकेला छोड़ देता है।
ओह
हाँ, सैल को पहली बार अपने हीरो के गहरे स्वार्थ का एक कड़वा एहसास होता है। वो जो पवित्र मार्गदर्शक वाली छवि थी वो टूटने लगती है।
फिर चौथा हिस्सा 1950, मेक्सिको की यात्रा, अमरीका से बाहर, वहां क्या होता है?
ये उनकी आखिरी बड़ी यात्रा है, शायद अमेरिका की सीमाओं से परे, कुछ ज्यादा असली, ज्यादा मौलिक अनुभव की तलाश में। मेक्सिको का माहौल रहस्यमयी है, रंगीन जीवन, संस्कृति, सस्ता नशा, वैश्यालय, सब कुछ।
लेकिन यही वो बड़ा विश्वासघात होता है।
हाँ, कहानी का सबसे निचला बिंदु शायद। सैल पैचिस से बुरी तरह बीमार पड़ जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर, और ठीक उसी वक्त डीन उसे फिर अकेला छोड़ देता है।
क्यों?
क्योंकि वो रुक नहीं सकता, उसे आगे बढ़ना है, वो बेचैन है। ये आखिरी निर्णायक धोखा सैल के मन में डीन की बची खुची इज्जत को भी खत्म कर देता है।
और आखिरी हिस्सा, उपसंहार।
कहानी न्यूयॉर्क लड़ती है, सैल अब बदला हुआ है, उसमें एक तरह की शांति है, वो एक स्थिर रिश्ते में है, और सबसे जरूरी, वो किताब लिख रहा है, यही किताब, ऑन द रोड।
और डीन?
डीन आखिरी बार दिखता है एक दयनीय हालत में, थका हुआ, कांपता हुआ, टूटा हुआ, अकेला। वो अब होली गूफ नहीं लगता, बल्कि एक रैग्ड घोस्ट, एक बदहाल भूत जैसा।
और सैल उसकी मदद नहीं कर पाता?
नहीं, वो अपनी नई प्रेमिका के साथ कॉन्सर्ट जा रहा होता है, वो चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा पाता। उपन्यास खत्म होता है सैल के हडसन नदी पर डूबते सूरज को देखने से। वो उस विशाल अमेरिकी जमीन, उस सड़क और डीन मोरियार्टी की उस खोई हुई सुंदर मगर दुखद आत्मा के बारे में सोचता है।
तो इन सब यात्राओं और किरदारों के पीछे गहरे विषय क्या हैं? एक तो जाहिर है वो आईटी की तलाश, उत्कृष्टता की खोज।
हाँ, वो तो है ही, एक तरह की आध्यात्मिक प्यास, जिंदगी की सतह के नीचे जाकर किसी गहरे परमानंद वाले सत्य को छूने की इच्छा। जैसा हमने कहा, जैज में, रफ्तार में, नशे में, दोस्ती में, उसे खोजते रहना।
और दूसरा बड़ा थीम है आजादी बनाम सामाजिक ढर्रा, फ्रीडम वर्सेस कन्फॉर्मिटी।
बिल्कुल, ये 1950s के दशक के अमेरिका की उस घुटन भरी एक रूपता के खिलाफ एक जोरदार आवाज है। सड़क यहाँ आजादी का प्रतीक है।
लेकिन क्या ये सवाल भी नहीं उठता कि डीन जैसी पूरी आजादी, क्या वो वाकई आजादी है या वो अपने ही आवेगों की गुलामी बन जाती है?
सही कहा, उपन्यास ये दिखाता है कि आजादी की ये बेलगाम खोज कैसे अपने आप में एक बंधन बन सकती है, शायद उस सामाजिक अनुरूपता से भी ज्यादा घुटन भरा बंधन।
अमेरिकी पश्चिम का मिथक, वो भी एक थीम है, जैसे पुराने जमाने के लोग पश्चिम गए थे नई शुरुआत के लिए।
हाँ, ये किरदार भी एक तरह से चेतना की नई सीमा खोजने पश्चिम जाते हैं, अमेरिका की एक रोमांटिक तस्वीर का पीछा करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें वहां अकेलापन, गरीबी और निराशा ही मिलती है। तो ये उस अमेरिकी सपने और उसकी जमीनी हकीकत के बीच का फासला भी दिखाता है।
और दोस्ती, खासकर मर्दों के बीच की दोस्ती, सैल और डीन का रिश्ता।
हाँ, वो कहानी का भावनात्मक केंद्र है, उसमें एक गहरा नॉन सेक्सुअल लगाव है, लेकिन साथ ही ये उस तरह के मर्दवाद की आलोचना भी है जहां पुरुषों की अपनी आजादी की खोज औरतों और बच्चों की कीमत पर होती है।
और एक उदासी भी है पूरी कहानी में, मोहभंग, वक्त का गुजरना। हाँ बिल्कुल, डिसिल्यूजनमेंट एंड द पैसेज ऑफ टाइम। जवानी की वो ऊर्जा हमेशा नहीं रहती, किरदार थकते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, सपने टूटते हैं। ये उपन्यास उस खास दौर के लिए एक दर्द भरा नगमा भी है, इस एहसास के साथ कि वो पागलपन भरा सफर हमेशा नहीं चल सकता।
और ये सब केरुएक ने जिस अंदाज में लिखा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोज, वो शैली ही जैसे इस बेचैनी और रफ्तार को पकड़ लेती है।
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक तकनीक नहीं है, वो कहानी के एहसास का, उसकी आत्मा का हिस्सा है।
वो लंबे लंबे वाक्य बिना रुके,
हाँ वो लंबे सांस रोक देने वाले वाक्य जिनमें कॉमा फुल स्टॉप कम ही आते हैं, वो पढ़ने वाले को उसी रफ्तार में बहा ले जाते हैं जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और नजारे तेजी से पीछे छूट रहे हो।
कहते हैं ये स्टाइल सीधे बीबॉप जैज से प्रेरित थी, चार्ली पार्कर जैसे संगीतकारों के इम्प्रोवाइजेशन से।
अच्छा,
एक लय है उसमें, एक गीतात्मकता जो पाठक को उस यात्रा के एहसास में खींच लेती है। और ये पूरी कहानी सैल की आवाज में है, उसकी यादों की एक धारा जैसी।
प्रतीक भी बहुत हैं इसमें, सड़क, गाड़ी, जैज।
हाँ, सड़क तो जैसे जिंदगी ही बन जाती है, खोज, आजादी, भागने का रास्ता। गाड़ी उनकी आजादी का रथ है, अमरीकी संस्कृति का प्रतीक भी। अमेरिका का विशाल लैंडस्केप वो किरदारों के मूड को दिखाता है, कभी उम्मीद भरा, कभी वीरान। और जैज, जैज सिर्फ संगीत नहीं, वो जीने का एक तरीका है, स्पॉन्टेनिटी का प्रतीक है।
डीन को भी किसी मसीहा की तरह दिखाया गया है।
हाँ, उसमें धार्मिक और पौराणिक कल्पना का भी इस्तेमाल है, लेकिन उसकी नैतिक विफलताएं उस छवि को बहुत जटिल बना देती हैं।
उपन्यास की कुछ पंक्तियां तो बहुत मशहूर हो गई हैं, जैसे वो "The only people for me are the mad ones. Burn, burn, burn like fabulous yellow Roman candles."
हाँ, मेरे लिए तो बस वही लोग हैं जो पागल हैं, जो शानदार पीली रोमन मोमबत्तियों की तरह जलते हैं, जलते हैं, जलते हैं। ये तो जैसे बीट पीढ़ी का घोषणा पत्र ही बन गया। ये औसत जिंदगी जीने से इनकार है, ये जुनून, तीव्रता, कला और आत्मा की आग में जलने का आह्वान है, बताता है कि वो किस तरह के अनुभव चाहते हैं।
लेकिन जलना शब्द में ही खतरा भी है।
बिल्कुल,
खूबसूरती भी है और खतरा भी, शानदार मगर पल भर में राख हो जाने वाला।
और एक जगह सैल सोचता है, व्हाट इज दैट फीलिंग व्हेन यू आर ड्राइविंग अवे फ्रॉम पीपल बट वी लीन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्रेजी वेंचर।
जब आप लोगों से दूर जा रहे होते हैं तो वो कैसा एहसास होता है, लेकिन हम अगले पागलपन भरे काम की तरफ झुक जाते हैं। हाँ, ये उस उदासी को पकड़ता है जो इस सारे रोमांच के नीचे हमेशा रहती है। लगातार चलते रहने का मतलब है पीछे छोड़ते जाना, लोगों को, जगहों को। तो एक तरफ बिछुड़ने का गम है, दूसरी तरफ आगे क्या होगा उसका नशा, विदाई और नई शुरुआत का वो अंतहीन चक्र।
और वो आखिरी पंक्तियां उपन्यास के अंत में, मैं डीन मोरियार्टी के बारे में सोचता हूँ, मैं डीन मोरियार्टी के बारे में सोचता हूँ। हाँ, सब कुछ खत्म होने के बाद, सारे मोहभंग के बावजूद, सैल अपने दोस्त को भूल नहीं पाता। वो डीन की याद को अमेरिका की आत्मा से जोड़ देता है। डीन अपनी सारी कमियों और उस बेपना ऊर्जा के साथ अमेरिका के उस कच्चे वादे, उसकी विशालता और उसके गहरे अकेलेपन का प्रतीक बन जाता है। दर्द के बावजूद डीन की याद सैल की जिंदगी और उसकी कला पर हमेशा हमेशा हावी रहती है।
पढ़ने वाले पर इस उपन्यास का क्या असर होता होगा? शुरू में तो शायद ये बहुत रोमांचक, उत्तेजित करने वाला लगता होगा।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ये जवानी की वो बेलगाम आजादी, अनजाने रास्ते पर निकल पड़ने का नशा, जुनून और अर्थ की तलाश, ये सारी भावनाएं जगाता है। पाठक किरदारों की ऊर्जा में बह जाता है, लगता है जैसे वो भी उसी सफर पर है।
लेकिन क्या इसकी स्थायी छाप ज्यादा जटिल, शायद उदास करने वाली है?
कह सकते हैं, क्योंकि उन ऊंची उड़ानों के बाद जमीन पर गिरने का दर्द भी है, अकेलापन, गरीबी, टूटे दिल, थकान, ये सब भी है। किरदारों को, खासकर डीन को, खुद को इस तरह जलाते हुए देखना दुखद है। ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या बिना जड़ों के, बिना जिम्मेदारियों के जीना वाकई आजादी है, या ये बस अकेलेपन का रास्ता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि रोमांच और स्थिरता के बीच संतुलन कहाँ है।
हाँ, ये पाठक के नजरिए को बदलता है, मंजिल से ज्यादा सफर को अहमियत देना सिखाता है, अपूर्णता में भी सुंदरता देखना। ये अमेरिका की एक तस्वीर बनाता है, विशाल, सुंदर और अकेला देश, और दोस्ती की ताकत जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है।
तो संक्षेप में कहें, ऑन द रोड हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज और उसकी अनिवार्य कीमत के बारे में क्या सिखाता है?
मेरे ख्याल से ये सिखाता है कि मुक्ति की चाहत वो सीधी साधी नहीं होती, उसमें कई परतें और विरोधाभास होते हैं। दोस्ती गहरी भी हो सकती है और नाजुक भी, और अमेरिकी आत्मा की वो तलाश चाहे कितनी भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, वो कभी खत्म नहीं होती। ये अनुभव की सच्चाई का जश्न मनाता है, लेकिन उस सच्चाई की कीमत पर भी सवाल उठाता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्य फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।